वचन। नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से याकूब की पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और जिसका मुख्य विषय है मसीही व्यवहारिक जीवन। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। ओ धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार अपने मित्रों के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि मनुष्य पाप में खींचकर पाप में पड़ता है, अभिलाषाओं में पड़ता है और बुराइयों की ओर बढ़ता है। परंतु आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इसके क्रम में देखेंगे कि किस प्रकार से पाप गर्भवती होकर के मनुष्य को और अधिक गहराइयों में ले जाती है। तो इससे पहले कि हम इन बातों को समझें और सीखें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थी और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आज फिर से आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले दिनों में आपने हम सब की सहायता की कि हम आपके वचनों को सीखने पाए। आज जब हम फिर से परीक्षा के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं याकूब की पत्री से, ताकि जब हम आपके वचन में से अध्ययन करें तो हमारे जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश, परेशान, चिंता और तनाव में है। पिताजी, आप उनकी भी सहायता करें ताकि हम इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, आप उन्हें छुटकारा देना चाहते हैं। आज के वचन पर आप अपने आशीष दें और हम सब की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और याकूब की पत्री एक अध्याय उसके 15 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। याकूब की पत्री एक अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, जब लालसा गर्भवती होती है तब पाप का जन्म होता है और पाप पूरा होकर मृत्यु लाता है, अर्थात पाप बड़ा होकर मृत्यु को लाता है। याकूब बड़ा ही अच्छा वाक्यांश काम में लेता है, अभिलाषा गर्भवती होकर। गर्भधारण दो के संगम से होता है। हमारे पुराने स्वभाव की अभिलाषा हम पर आने वाली परीक्षा के संगम से पाप उत्पन्न करती है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू अपने भाई पर क्रोध करता है तो तूने हत्या की है, क्योंकि मन की इच्छा कर्म से प्रकट होती है। यीशु ने यह भी कहा था, यदि तूने किसी स्त्री को लालसा से देखा तो उसके साथ तूने व्यभिचार किया। पाप का उद्गम मन से होता है जो बाद में प्रकट रूप में दिखता है। यहां एक प्रश्न उठता है, क्या परीक्षा पाप है? इसका उत्तर निश्चय ही नहीं है। मन का विचार कर्म से प्रकट होने पर परीक्षा पाप हो जाती है। मार्टिन लूथर ने इसे बड़े ही अच्छे रूप में समझाया है, आप चिड़ियों को सिर पर मंडराने से नहीं रोक सकते, परंतु बालों में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। अतः पाप आंतरिक और बाहरी कर्म को दिखाता है। परीक्षा अपने आप में पाप नहीं है। हम सब में दुष्ट स्वभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस विषय में मूर्ख बनने से कोई लाभ नहीं है। हम सब पर बुराई करने की परीक्षा आती है। देह में हम सब दुर्बल हैं। एक मनुष्य पेटू हो सकता है तो दूसरा अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति हो सकता है। ये दोनों ही दैहिक पाप हैं। दोनों का उद्गम भीतर से ही होता है। केवल यीशु मसीह ही कहने योग्य था कि संसार के सरदार का उस पर कोई भी अधिकार नहीं है, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है याकूब की पत्री में, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, जन्म देती है। उसकी संतान मृतक नहीं जीवित हैं। मन का बुरा विचार बाहरी परीक्षा के संगम से कार्य उत्पन्न करता है जो पाप है। मेरे मित्रों, हम आज पाप को उचित ठहराते हैं, क्रोध को तर्क करके स्वीकार करते हैं, हम अफवाह फैलाने को स्वीकार करते हैं, हम अनेक पापों को तर्क करके स्वीकार करते हैं, हम घोर अनैतिकता को भी स्वीकार करते हैं, परंतु बाइबल उन्हें पाप ही कहती है। लिखा है, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जी हाँ, धर्मशास्त्र में तीन प्रकार की मृत्यु है। पहला, शारीरिक मृत्यु जो सबकी होती है। दूसरा, आत्मिक मृत्यु जो खोए हुए की है, वह पापों और अपराधों में मरा हुआ है। इससे हम इफिसियों की पत्री 2:1 में पढ़ते हैं। और तीसरा मृत्यु है अनंत मृत्यु, अविश्वासी की मृत्यु जो उसका अनंत जीवन है। मृत्यु का वास्तविक अर्थ है वियोग, अलग। विश्वासी के लिए इसका अर्थ है कि पाप जन्म लेकर अर्थात कर्म से प्रकट होकर उसे परमेश्वर से अलग कर देता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1:6 में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करके पाप को स्थान नहीं दे सकते हैं। यहां पर अंधकार में चलने की बात कही गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंधेरे में चलें, परंतु इसका मतलब यह है कि हम पाप में जीवन ना चलाएं, हम उसके अनुसार ना रहें जिसमें पाप होता है। मेरे विचार में आज का सबसे बड़ा पाप व्यभिचार है। यह लगभग सब ही के सामने है और यह कोई नई बात नहीं है। मेरे विचार में यौन पर दिया गया ध्यान और आज के वस्त्र व्यभिचार को किसी भी समय की तुलना में सबसे अधिक बढ़ावा देते हैं। प्राचीन युग में व्यभिचार और शराब के कारण संसार के बड़े बड़े देश नष्ट हो गए हैं। शराब, शबाब और संगीत ने संसार के बड़े बड़े राज्यों को गिराया है। रोम साम्राज्य किसी विजेता के द्वारा नहीं गिरा था। रोम के पतन का कारण था पाप की अधिकता। मुझे एक बार एक रूपवान व्यक्ति ने कहा, मुझे एक अति सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया है, मैं उसे अपनाना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा, क्या आपने उससे विवाह की बात की है? उसने कहा, वह विवाहित है। मैंने उससे कहा, अच्छा होगा कि आप इस विचार को ही त्याग दें। उसने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित होगा कि उससे अपने पति को तलाक देने की बात कहूं कि उसके बाद हम विवाह कर लें। मैंने उससे कहा, निसंदेह, परंतु परमेश्वर की संतान होने के कारण आप बच नहीं पाएंगे। और मैंने उससे अनेक दंपतियों के उदाहरण दिए जो सोचते थे कि ऐसा करना उचित है, परंतु वे कभी भी खुश न रह पाए। मेरे प्रियो, आज भी ऐसा ही होता है। आज यह एक त्रासदी है कि लोग सोचते हैं कि वे पाप करके बच जाएंगे। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को लाता है। अभिलाषा केवल पाप को ला सकती है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो पाप के कारण आप परमेश्वर की सहभागिता से अलग हो जाएंगे और वह आपको दंड देगा यदि आपने स्वयं को नहीं जांचा। मेरे प्रियो, मैंने उस युवक के मन में परमेश्वर का भय डाला तो वह चला गया और कुछ सप्ताह बाद आकर बोला, हमने निर्णय ले लिया है। मुझे डर था कि उन्होंने गलत निर्णय न लिया हो। उसने कहा, हमें यह समझ में आ गया है कि इस जीवन में हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, यह हमारे लिए असंभव है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग में हम एक हों। वह एक अच्छा विश्वासी था। उसने मुझे बताया कि उसने किसी दूसरे शहर में अपने तबादले की याचना की है। मेरे विचार में अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि एक दिन उसने रविवारीय आराधना में आकर मुझसे कहा, मुझे आप अलविदा कहें क्योंकि मैं अब जाने पर हूं। मेरे प्रियो, परीक्षा आज बहुत है। अनेक विश्वासी कहते हैं, ओह, शैतान ने मुझे बहकाया है। मेरे मित्रों, परीक्षा गर्भवती तब तक नहीं होगी जब तक उसका संगम आपके मन में, आपके मन के अभिलाषा से ना हो, जो आपका पुराना दुष्ट स्वभाव है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस संगम के बाद पाप का जन्म होगा और पाप मृत्यु लाएगा। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो पाप तुरंत परमेश्वर के साथ आपके संबंध विच्छेद कर देगा और यह मृत्यु है। हम में से कई लोग बार बार शैतान को दोषी ठहराते हैं। एक बार किसी को मैंने यह कहते हुए सुना, एक पादरी साहब सुबह सुबह मैदान में दौड़ने के लिए जाया करते थे। अंधेरे में उसने मैदान के बीच में एक व्यक्ति को रोते हुए सुना। वह उसके करीब गया और उससे पूछा कि भाई साहब, आप कौन हैं और क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, मैं शैतान हूं। तो पादरी साहब बहुत आश्चर्यचकित हुए कि शैतान रो रहा है। उसने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? तब शैतान ने कहा कि हर एक व्यक्ति अपने आप से पाप करता है और मुझ पर ही दोष लगाता है कि शैतान ने मुझे बहका दिया, तो मैं रो नहीं तो क्या करूं। मेरे प्रियो, आज यह सच है कि हम कई बार पाप स्वयं से करते हैं और शैतान को ही दोषी ठहराते हैं। आज हमें चाहिए कि हम स्वयं उन बातों पर विचार करें और एक सही निर्णय लें। परमेश्वर की ना तो परीक्षा ली जा सकती है और ना ही परमेश्वर किसी को बुरी बात से परखता है। आज मनुष्य हर एक बुराई को परमेश्वर पर डाल देता है। इसीलिए याकूब भी कहता है कि सच तो यह है कि अभिलाषा मन से उत्पन्न होती है और बाहरी परीक्षा के संगम से पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य पर यदि कोई बुराई आती है तो वह उसकी ही करनी का फल है। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। वह तो मुक्तिदाता है। वह मुझे और आपको इससे छुड़ाता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है धोखा ना खाओ, अर्थात भटक ना जाना। यीशु ने एक चरवाहे का दृष्टांत सुनाया था। उसकी भेड़ भटक गई थी और वह उसे खोजने के लिए निकल पड़ा था। याकूब के कहने का अर्थ है कि इस भ्रम में मत रहो कि पाप करके बच जाओगे। जो पाप करता रहता है उसका संबंध परमेश्वर से नहीं है। उसका तो नया जन्म कभी हुआ ही नहीं है। यदि आप पाप में रहकर खुश हैं तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। यह बहुत ही सीधी सी बात है। काल्विन का अनुयायी यह मानता है कि एक बार आपका उद्धार हो गया है तो आप कभी नहीं भटकेंगे, और अर्मिनी का मानना है कि आप उद्धार पाकर भी उद्धार से वंचित हो सकते हैं। एक बार इन दोनों अनुयायियों के बीच में विवाद हो रहा था। अर्मिनी ने कहा, यदि मैं यह मान लूं कि उद्धार पाकर हम कभी नहीं भटकेंगे तो मैं अपने जीवन को पाप से भर लूंगा। काल्विन अनुयायी ने उत्तर दिया, आपके विचार में एक सच्चे विश्वासी को संतुष्ट होने के लिए कितने पाप करने की आवश्यकता है? यह एक अति उत्तम उत्तर था। यदि आप पाप करके संतोष पाते हैं तो आपको स्वयं को जांच करके देखना है कि आप विश्वास में हैं या नहीं। पाप में गिरने वाला मनुष्य है। जी हां, किसी ने कहा है, पाप पर दुखी होने वाला संत है और पाप पर घमंड करने वाला शैतान है। मेरे मित्रों, हम सब परीक्षा में पढ़ते हैं, परंतु सुनिश्चित करें कि हम पाप को जन्म ना दें। यदि आप परीक्षा में गिरें तो पाप का गर्भपात नहीं हो सकता है। पाप और मृत्यु अंतिम परिणाम है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर फिरें ताकि हम इसमें ना पड़े रहें। याकूब की पत्री 1:17 में आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। चांद का एक भाग अंधकार होता है परंतु दूसरा भाग जगमगाता है। परंतु परमेश्वर में अंधकार नहीं है। हम अपनी परछाई गिराते हैं। सिकंदर महान के बारे में एक कथा प्रचलित है। वह संसार को जीतकर यूनान लौटा। वह अपने गुरु अरस्तु के पास गया कि उसे अपने विजय अभियान का वृतांत सुनाए। उस समय अरस्तु नहा रहा था। उसने द्वार पर खड़े खड़े ही अरस्तु को सारा हाल सुना दिया और अंत में कहा, अब मैं आपको संसार की कोई भी वस्तु दे सकता हूं, जो आप कहें वह दूंगा। अरस्तु ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे प्रकाश के मार्ग से हट जा। मेरे कहने का अर्थ है कि वह सब अपनी छाया गिराते हैं, परंतु परमेश्वर की छाया नहीं है। आप एक दूसरे को रोकते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी को रोकें, अंधकार को लाएं, पाप को लाएं। आगे हम पढ़ते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। जी हां, परमेश्वर बदलता नहीं है। जैसा सृजन कार्य का नियम प्रकट करता है, परमेश्वर आज के अनेक विश्वासियों के समान ऊपर नीचे नहीं होता रहता है। आज ऊपर तो कल नीचे, वे एक ही जगह चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए कहता है, हर एक उत्तम वरदान ऊपर ही से है। मेरा एक मित्र बीमा का एजेंट है और मैं घर के बीमा में उनके द्वारा काम में लिए गए एक शब्द के बारे में उससे मजाक करता रहता हूं। उनकी बीमा नीति में लिखा है कि कंपनी कुछ बातों की उत्तरदायी नहीं है। परमेश्वर के किसी भी काम के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं है। मैं उससे कहता हूं, आपके विचार में परमेश्वर आपके घर को क्या हानि पहुंचा सकता है? वह कहता है, जैसे बवंडर आदि। मैं उससे पूछता हूं, क्या परमेश्वर बवंडर का उत्तरदायी है? मैं मानता हूं कि यह उनके कहने का तरीका है, परंतु सदियों से मनुष्य इन दुर्घटनाओं के लिए परमेश्वर को ही दोषी ठहराता आ रहा है। मेरे मित्रों, यदि आपको कोई अच्छी वस्तु मिलती है तो वह परमेश्वर से है। आज आपकी आशीषों को गिने, सूर्य प्रकाश देता है, वर्षा, बादल, हरी हरी घास, पीने का पानी, हवा जिसे आप सांस में लेते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल दिया है। उसे दूषित करना मनुष्य का काम ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अच्छी वस्तुएं ही देता है। परमेश्वर भला है, जिसे हम समझ नहीं सकते कि वह कैसा भला है। याकूब के पत्री 1:18 में हम आगे पढ़ते हैं, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। यह निश्चय ही नए जन्म का संदर्भ है। वह हमें अपनी संतान कैसे बनाता है? सत्य के वचन के द्वारा, कि हम उसके सृजित प्राणियों में प्रथम फल हों। कुछ लोगों का कहना है, यदि मेरा भटकना पूर्व नियत है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यदि मेरा उद्धार होना है तो होकर ही रहेगा। यहां मन की इच्छा के दो पक्ष हैं। अपनी सुइच्छा से उसने हमें संतान बनाया। जन्म लेने के लिए मनुष्य को दो के संगम की आवश्यकता पड़ती है। अतः जब उसकी इच्छा आपकी इच्छा में समा जाती है, तब आपका नया जन्म होता है। अब आप यह न कहें कि आप उत्तरदायी नहीं हैं। उसकी इच्छा तो यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। आपका जन्म वचन के द्वारा होता है। जब आप परमेश्वर के वचन को मानकर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब आपका नया जन्म होता है। आप अपने पुराने जीवन की बुराइयों को छोड़कर यीशु में आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्रियो, नया जन्म हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पाते हैं। नया जन्म अर्थात मुक्ति, उद्धार, जिसे परमेश्वर हमें देता है, हम कहीं पर जाकर के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया और हमारे पापों के बदले में मरा, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, यदि आज तक आपने अपने जीवन में नया जन्म का अनुभव नहीं किया है, मुक्ति और मोक्ष का अनुभव नहीं किया है, तो आज ही आप निर्णय लें और प्रभु यीशु के पास आ जाएं, उसे अपने जीवन में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और वह आपके पापों को क्षमा करके आपको एक नया व्यक्ति, नया जन्म देगा, ताकि आप उसके हो जाएं, उसके संतान बन जाएं। मेरे प्रियो, आज आपको इसके लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेंगे, ताकि इस जीवन के निर्णय के द्वारा आप अनंत शांति और आनंद को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तुझसे दुआ मसीहा, मेरी इल्तिजा है ये, तुझसे मेरी खता।